दिन भर 22 मई बुधवार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का नमस्कार। वीवीपैट पर्चियों के मतों से सबसे पहले मिलान करने की विपक्ष की मांग को चुनाव आयोग ने ठुकराया। चुनावी नतीजों से एक दिन पहले क्या सोच रहे हैं कोलकाता के लोग?
मोदी जी का टारगेट है सेकंड टाइम आने के लिए, ममता दीदी का टारगेट है पावर में आने के लिए, सेंट्रल में आने के लिए। पावर तो लड़ाई तो बहुत काफी ज्यादा हुआ है।
सुनवाएंगे समलैंगिक संबंधों की बात को स्वीकार करने वाली महिला धावक दुती चंद से खास बातचीत।
जो प्यार रिलेशन रखा था हमारे बीच में ही रखा था, किसी को नहीं बताया था, लेकिन ये मजबूरी से आके मुझे बताना पड़ा दुनिया को, क्योंकि हम दोनों को चाहते हैं।
जानेंगे इंडोनेशिया में राष्ट्रपति जोको विडोडो के खिलाफ क्यों हो रहे हैं प्रदर्शन, लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। चुनाव आयोग ने वीवीपीएटी पर 22 विपक्षी दलों के नेताओं की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से मतों की गिनती से पहले वीपीपीएटी पर्चियों का मिलान करने की मांग की थी। इसके साथ ही विपक्षी दलों ने किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में किसी खास लोकसभा क्षेत्र में सभी मतों का मिलान पर्ची से करने की मांग की थी। 3 सदस्यों वाले चुनाव आयोग ने आज इस मसले पर अहम बैठक की, इस मांग को खारिज कर दिया। इंडोनेशिया में हुए चुनावों के बाद दंगे भड़क गए हैं जिसमें कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस चुनाव में जोको विडोडो राष्ट्रपति पद पर विजयी हुए हैं। इंडोनेशियाई पुलिस ने कहा है कि इन मौतों की जांच की जा रही है। पुलिस मुखिया ने कहा है कि लोगों को ये नहीं मानना चाहिए कि इन सब की जिम्मेदार पुलिस है। अफवाहों पर रोक लगाने के लिए कुछ इलाकों में सोशल मीडिया पर रोक लगा दी गई है। देश के पुलिस प्रमुख टीटो ने पुलिस द्वारा फायर किए जाने की बात से इनकार किया है। ब्रिटेन की बहुत पुरानी और जानी मानी कंपनी ब्रिटिश स्टील ने काम करना लगभग बंद कर दिया है जिसकी वजह से हजारों लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है। स्कनथ्रोप में स्थित इस कंपनी के मुख्य प्लांट सहित लगभग 25,000 सप्लाई चेन हैं। ब्रिटिश स्टील के मालिक ग्रेबुल कैपिटल ने कंपनी को चलाने के लिए सरकार से मदद मांगी है। डॉक्टर कैथरीन रिंकवॉल्ड स्टील इंडस्ट्री के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने इस कंपनी के बंद होने पर कहा,
It's extremely sad news for the people involved in the plant and for the supplying companies.
ये बहुत ही दुखी करने वाली खबर है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो इस कंपनी के साथ जुड़े थे और साथ ही जहां के लिए ये कंपनी स्टील सप्लाई करती थी। वैसे इस कंपनी की हालत को देखते हुए अब सरकार को भी सोचना होगा कि वो इसके लिए सरकारी कर्ज दे सकती है या नहीं। ये थे स्टील इंडस्ट्री से जुड़े एक विशेषज्ञ के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन में टॉम रे नामक एक शख्स को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा यानी एनएचएस के सभी स्टाफ को सेप्सिस नामक बीमारी की ट्रेनिंग देने का दायित्व सौंपा गया है। दरअसल टॉम रे ने साल 1999 में अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई थी तो डॉक्टरों ने उन्हें स्वस्थ घोषित किया था, जबकि वो सेप्सिस नामक बीमारी को धीरे धीरे ग्रसित हो रहे थे। अब हालत ये हो गई है कि टॉम रे के दोनों हाथ और पैर काटने पड़े हैं। इसके अलावा उनके चेहरे के भी कई हिस्से को काटना पड़ा है। लिवरपूल में रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग को संबोधित करते हुए टॉम ने कहा कि आम लोगों के साथ साथ डॉक्टरों और नर्सों को भी सेप्सिस की अधिक जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा,
Porters, receptionists, especially at GP surgeries.
अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और नर्स के अलावा मरीजों को ले जाने वाले स्टाफ और रिसेप्शन पर मौजूद कर्मचारियों को भी सेप्सिस की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ठीक वैसी ही है जैसे किसी इमारत में आग लगती हो। हम सभी को पता होना चाहिए कि आग से कैसे बचना है। ये थे सेप्सिस नामक बीमारी से पीड़ित शख्स टॉम रे के शब्द। ईरान में एक गायिका को अदालत के सामने पेश होने का समन जारी किया गया है। दरअसल नेगर मुआज़म नामक इस गायिका ने पर्यटकों के सामने एक पारंपरिक पोशाक पहनकर गाना गाया था और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया था। ईरान की समाचार एजेंसी फार्स के मुताबिक इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि इस कदम की ईरान के सोशल मीडिया में काफ़ी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अगर कोई खुशियां बांट रहा है तो उसे रोका क्यों जा रहा है। वहीं कई लोगों का कहना है कि जिस तेज़ी से इस गायिका के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उतनी तेज़ी से उन महिलाओं के लिए नहीं की जाती जिन पर एसिड से हमला होता है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद अब कल वोटों की गिनती होनी है, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी आज चुनाव आयोग ने कांग्रेस समेत 22 विपक्षी दलों की वीवीपैट का मिलान कुल मतों की गिनती से पहले करने की मांग को खारिज कर दिया है। विपक्षी दलों की मांग थी कि वीवीपैट मशीन की पर्ची के ईवीएम से मिलान में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उस क्षेत्र की 100% वीवीपैट मशीनों की पर्चियों का मिलान ईवीएम से किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हर संसदीय क्षेत्र में 5 ईवीएम मशीनों की वीवीपैट की पर्चियों से मिलान करना जरूरी है। चुनाव आयोग ने आज साफ किया कि वीवीपैट मशीनों की पर्चियों का मिलान कुल मतों की गिनती के आखिर में किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, सुनिए बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद की इस रिपोर्ट में।
आज 3 सदस्यों वाले चुनाव आयोग की विपक्षी पार्टियों की मांग पर एक अहम बैठक हुई, जिसमें विपक्षी दलों की मांग पर काफी देर तक गौर किया गया और उसके बाद इसे खारिज कर दिया गया। विपक्ष ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। मंगलवार को कांग्रेस के सीनियर नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग से मिलने के बाद कहा था कि उनकी मांगों को लेकर आयोग ने बहुत सकारात्मक रुख नहीं दिखाया था। सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने विपक्ष की मांग के बारे में बताते हुए कहा,
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एक नहीं 5 पोलिंग बूथ का वीवीपैट से मैच होगा। सवाल ये है कि अगर वो मैच में कुछ गड़बड़ निकला तो क्या करेगी इलेक्शन कमीशन, इसके ऊपर स्पष्टता नहीं है। हमारा कहना ये है कि अगर एक भी पोलिंग बूथ के अंदर ये मिसमैच मिला तो पूरे असेंबली सेगमेंट उस असेंबली सेगमेंट के वीवीपैट को गिनना चाहिए, ना कि मशीन के नंबर।
अपना फैसला सुनाते हुए आयोग ने इस बात को दोहराया कि एक संसदीय क्षेत्र के 5 मतदान केंद्रों की वीवीपीएटी पर्चियों को मतगणना के बाद मिलान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में बिना सुरक्षा के ईवीएम के परिवहन की खबरें आने के बाद विपक्ष सक्रिय हुआ। हालांकि विपक्ष का कहना है कि ये मांग लिखित रूप में 1.5 महीने पहले की गई थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग से मिलने के बाद कहा, इससे पहले मतगणना में 100% वीवीपीएटी पर्चियों के मिलान की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ही चुनाव आयोग से 5 बूथों पर पर्चियों के मिलान का आदेश दिया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी एक बयान जारी कर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
विपक्षी पार्टियां चुनावी गड़बड़ी के कारण वीवीपैट की पर्चियों का ईवीएम से मिलान की बात करने पर जोर दे रही हैं। इससे पहले कल चुनाव आयोग से विपक्षी दलों ने ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक ले जाने में अनियमितता बरतने के आरोप लगाए थे। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ईवीएम की सुरक्षा को अचूक बताया था। आखिर चुनाव समाप्त होने के बाद ईवीएम को किस प्रक्रिया के तहत मतगणना स्थल तक ले जाया जाता है और उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम होते हैं, ये भी अब सवाल अहम बन गए हैं। इसकी पूरी जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी सरप्रिया सांगवान। सरप्रिया, बताएं कि ये मतदान से पहले ईवीएम कहाँ रखी जाती हैं?
शाहिद, एक जिले में जितनी भी ईवीएम उपलब्ध होती हैं वो सब एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर DEO की निगरानी में एक गोदाम में रखी होती हैं, और गोदाम में भी डबल लॉक सिस्टम होता है और गोदाम की सुरक्षा में हमेशा पुलिस बल तैनात रहता है और उस साथ ही CCTV सर्विलांस भी होता है। और फिर चुनाव से पहले गोदाम से एक भी ईवीएम बिना चुनाव आयोग के आदेश के बाहर नहीं जा सकती है, और चुनाव के वक्त ईवीएम की जांच पहले इंजीनियर करते हैं और ये जांच राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही होती है। और चुनाव की तारीख करीब आने के बाद ईवीएम बिना किसी क्रम के अलग अलग बूथ के लिए आवंटित की जाती है, और राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि तब मौजूद अगर नहीं भी होते हैं उस वक्त, तो जो आवंटित ईवीएम है और ये वीवीपीएटी की जो लिस्ट है वो भी राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों को सौंप दी जाती है। सारी ईवीएम मशीनों के सीरियल नंबर को भी पार्टियों से शेयर किया जाता है।
तो ये फिर पहुंच जाती हैं बूथ पर, फिर वोटिंग होती है, तो वोटिंग के बाद फिर क्या इनको सीधा स्ट्रांग रूम में ले जाया जाता है?
नहीं, एकदम से इन्हें कभी भी स्ट्रांग रूम में नहीं लिया जाता, लेके जाया जाता है। पहले तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ईवीएम में वोटों के रिकॉर्ड को चेक करता है, ठीक है, कि कितने सारा मतदान हुआ है। फिर उसके बाद सभी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट वहां जो होते हैं उनको एक अटेस्टेड कॉपी दी जाती है कि हाँ इतनी यहाँ पे मशीनें थी, इतना ये रिकॉर्ड हुआ है, वोटिंग हुआ है, और सब उनको अटेस्ट करके दिया जाता है। और उसके बाद ईवीएम को सील कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर प्रत्याशियों या उनके जो पोलिंग एजेंट होते हैं बूथ में उनके हस्ताक्षर भी होते हैं कि अब हमने सील कर दिया है। तो उसके बाद फिर प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम तक, मतलब ईवीएम के साथ जाते हैं। ये अच्छा। इतनी इस पूरी सुरक्षा में और पूरी कड़ी निगरानी में बूथ से स्ट्रांग रूम तक कोई भी ईवीएम लेके जाई जाती है,
तो वो ले जाते हैं। इसके बाद जो स्ट्रांग रूम की बात आ रही है, अभी कई विपक्षी दलों ने आपत्ति भी उठाई है कि स्ट्रांग रूम में सुरक्षित नहीं है, या स्ट्रांग रूम में जिस तरीके से कुछ वीडियोज आए कथित तौर पर उसमें कहा गया कि सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहे जो रिजर्व ईवीएम थे, तो स्ट्रांग रूम कितने सुरक्षित होते हैं?
दरअसल जो जिन चीज़ों के बारे में अभी जिन वीडियोस के बारे में बताया जा रहा है उस पर तो चुनाव आयोग ने खुद अपनी सफाई पेश कर दी है कि वो सब पुराने मामले हैं या वो सही मामले नहीं हैं। लेकिन जो स्ट्रांग रूम होता है वो बहुत ही कड़ी सुरक्षा में उसको बनाया जाता है, उसके अंदर ईवीएम रखी जाती हैं और वहाँ पे ऑफिशियल्स जो होते हैं उसके अलावा कोई नहीं पहुँच सकता। और सुरक्षा भी तीन स्तरीय होती है कि सीआरपीएफ स्ट्रांग रूम में उनकी सुरक्षा के लिए तैनात होती है अंदर स्ट्रांग रूम के अंदर, और बाहर से राज्य पुलिस सुरक्षा कर रही होती है। और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिले के डीएम और एसपी की होती है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखकर उसको सील किया जाता है, और जब सील किया जाता है तब राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं और ये प्रतिनिधि खुद भी सील लगा सकते हैं। तो स्ट्रांग रूम में सिर्फ एक तरफ से एंट्री होती है, अगर कोई खिड़की भी है तो वो भी सील करनी होती है। और डबल लॉक सिस्टम होता है जिसकी एक चाबी रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है, एक चाबी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है, और साथ ही सीसीटीवी एंट्री पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा होता है। तो सुरक्षा बल जो होते हैं उनके पास एक लॉक बुक होती है कि उसमें हर एंट्री की तारीख, वक्त, ड्यूरेशन, सबका जो भी आया गया नाम दर्ज होता है, जरूरी है वो, और चाहे वो फिर चुनाव आयोग का अधिकारी आया हो, चाहे एसपी हो या डीएम हो। तो दरअसल जब वोट गिनी जाती है वो कमरा स्ट्रांग रूम के अगर पास भी होता है तो दोनों कमरों के बीच एक मजबूत घेरा बनाया जाता है ताकि स्ट्रांग रूम तक तो कोई ना पहुंच सके, और अगर दोनों थोड़ी सी दूरी पर हैं तो बैरिकेडिंग होती है प्रॉपरली दोनों तरफ, और उसके बीच से ही ईवीएम काउंटिंग हॉल तक पहुंचाई जाती है। तो इस तरीके से ये विपक्ष का जो वो आरोप है, देखा जाए तो बहुत कड़ी सुरक्षा होती है स्ट्रांग रूम की, इतना आसान नहीं है क्योंकि कई स्तर पर कोई भी वहाँ पर घुसना चाहेगा या उसमें कुछ बदलाव करना चाहेगा तो बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच से उसे गुजरना होगा और बहुत सारे लोगों के बीच से गुजरना होगा।
ईवीएम पर इतनी सारी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरप्रिया। बढ़ते हैं आगे। विपक्षी पार्टियों की मांग और ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा है कि अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण हैं और वो सतर्क और चौकन्ना रहें, डरे नहीं, खुद पर और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास रखें, उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी लगातार 9 ट्वीट करके विपक्ष को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम का विरोध देश की जनता के जनादेश के साथ अनादर है और हार से बौखलाई ये 22 पार्टियां देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवालिया निशान उठाकर विश्व में देश और लोकतंत्र की छवि को धूमिल कर रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि मतगणना के 2 दिन पहले चुनावी प्रक्रिया में मांग पूरी तरह संवैधानिक है। अमित शाह ने आखिरी ट्वीट करते हुए कहा कि ईवीएम पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल सिर्फ गलत फहमी फैलाने का प्रयास है, जिससे प्रभावित हुए बिना हम सबको हमारे प्रजातांत्रिक संस्थानों को और मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। 2019 का सबसे अहम दिन 23 मई।
इस दिन तय होगी अगली सरकार।
देश को मिलेगा नया प्रधानमंत्री।
मोदी लौटेंगे या फिर कोई और आएगा।
एनडीए की ज्यादा सीटें आएंगी या यूपीए की।
उत्तर प्रदेश में महागठबंधन कितनी सीट जीतेगा।
बंगाल से क्या जनादेश निकलेगा।
इन सभी सवालों के जवाब, चुनावी नतीजे और सटीक विश्लेषण बीबीसी हिंदी रेडियो पर
शाम 7:30 बजे से 9:30 बजे तक पूरे 2 घंटे का विशेष कार्यक्रम दिन भर प्रस्तुत करेंगे
रूपा झा,
रेहान फजल,
राजेश जोशी
और सुशीला सिंह।
बीबीसी हिंदी रेडियो फेसबुक और यूट्यूब पर।
मतों की गिनती से पहले कोलकाता के आम नागरिकों के बीच काफी उत्सुकता है, क्योंकि कई दशकों में पहली बार उन्हें चुनाव में एक बड़े घमासान से रूबरू होना पड़ा। लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जमकर हिंसा हुई। कोलकाता में मौजूद बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने शहर के आम लोगों से बात की और मतगणना से पहले उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की।
अब जबकि कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं चुनावी नतीजे आने में और एग्जिट पोल्स लोग देख रहे हैं, टीवी की स्क्रीनों में चिपके हुए हैं, सड़कों पर कलकत्ते की अलग ही नजारा है। यहाँ भी चाय की दुकान पर मैं खड़ा हूँ। क्या नाम हुआ भाई आपका, चाय की दुकान आपकी?
विश्वजीत सर।
तो विश्वजीत जी की चाय की दुकान पे चाय छान रहे हैं, भाड़ जो कुल्लड़ होता है मिट्टी का उसमें लोग यहाँ जमा है। उत्सुकता है मन में कि नहीं, चुनाव इस बार मजेदार हुआ कि नहीं? क्या
बहुत मजेदार।
किस तरह का इलेक्शंस रहा इस बार बंगाल में, आपको क्या लगता है?
इलेक्शंस इस टाइम बहुत टफ रहा है। रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी सारे एकदम पूरा जोर लगा के लड़ा है,
लेकिन वायलेंस भी हुई, लड़ा भी तो वायलेंस पटाखे भी हुए।
पटाखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली बंगाल में जो न्यूज़ है उसमें वायलेंस की खबर सबसे ज़्यादा है, बाकी स्टेट में तो ज़्यादा नहीं मिला।
तो आप लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं नतीजों को लेकर?
हाँ एक्साइटेड तो है, डेफिनेटली वो तो है। मोदी जी का टारगेट है सेकंड टाइम आने के लिए,
और
ममता दीदी का टारगेट है पावर में आने के लिए, सेंट्रल में आने के लिए। तो पावर तो लड़ाई तो बहुत काफ़ी ज़्यादा हुआ है,
लड़ाई जम के है। मोदी जी केंद्र में आना चाहते हैं, ममता जी भी चाहती हैं कि प्रधानमंत्री बने, ये कह रहे थे। ये आपका भी जो है बड़ा उत्साहित लगता है कि इंतजार कर रहे हैं हम नतीजों का, मन धक-धक कर रहा है कि नहीं अंदर से?
हाँ धक-धक कर रहा है, मगर देखिए इसमें खाली बीजेपी का बात नहीं है, हम बंगाल में हैं, टीएमसी भी बहुत काम किया है, कोई ज़रूरी नहीं कि बीजेपी है, टीएमसी भी अपना, ममता दीदी भी यहाँ पर ही अपना जानते हुए बहुत सुविधा सुविधा देखा है इंसान को।
लेकिन बहुत यहाँ पे हिंसा बहुत हुई है, लड़ाई बहुत
हिंसा है। हर पार्टी में हिंसा है, पार्टी नेता में हिंसा है, तो फिर पब्लिक का बातें छोड़ दीजिए, ठीक है?
आप बताइए, आप नौजवान हैं,
हम तो पता नहीं
मजा आ रहा है कि नहीं इस बार चुनाव में, सबसे अलग हुआ कि हमेशा की तरह हुआ?
हमको ये पता नहीं है कि कैसा हो रहा है चुनाव।
तो कुछ लोग हैं जो खुलकर अपनी राय देना चाह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो
जी जो नया चीज देखने के लिए जो मिला है इस बार चुनाव में, प्रचार जो पहले जो होता था ना, पहले सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना नहीं था, इस बार सोशल मीडिया बहुत जम के आए हैं सामने, ठीक है? सोशल मीडिया का यूज़ सारे चैनल्स किए हैं, सारे पार्टी किया है सोशल मीडिया का यूज़, उसमें बहुत सारा चीज़ गलत है, बट
इस फेक न्यूज़ की बात,
फेक न्यूज़ बहुत बहुत आगे सामने आया है पब्लिक के सामने, उसमें बहुत पब्लिक कन्फ्यूज भी हो गए हैं, और बहुत लोग पब्लिक जो अपना दिमाग चलाते हैं वो लोग मेरे ख्याल से सही लोगों को सिलेक्ट किया है, सही लोगों को चुना है।
तो ये जैसा ये कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ का भी काफ़ी जोर रहा इस बार चुनाव के वक्त में, गलत सलत खबरें भी चलती रही जिसकी वजह से हिंसा भी बढ़ती रही, और लेकिन लोग बड़े उत्साहित हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उस पल का कि जब नतीजे सामने आए। हालांकि ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा क्योंकि वीवीपैट के भी जो है गिनतियाँ होंगी, तो इंतज़ार थोड़ा सा लंबा है लोगों का। सलमान रावी, BBC कोलकाता।
बढ़ते हैं आगे, भारतीय महिला धावक दुति चंद एक बार फिर चर्चा में हैं। पहले वो शरीर में अधिक पुरुष हार्मोन होने की वजह से चर्चा में आई थीं, और इस बार उन्होंने खुद के समलैंगिक होने की बात स्वीकार की है। 100 मीटर की दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली दुति चंद ने 2018 में एशियाई खेलों में 2 रजत पदक जीते थे। हमारे सहयोगी सुब्रत कुमार पति ने दुति चंद से उनके समलैंगिक संबंधों और आगे भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से बात की।
बेसिकली मैं कहूँगी, जब प्यार किसी को हो जाता है तो इसमें जात वर्ण रंग इसे कोई रिलेशन नहीं रहता है, तो दिल जिसको चाहते हैं इसको ही हो जाता है। जैसे रिश्ता था वैसे अच्छा रिश्ता था हमारे दोनों के बीच में, लेकिन हम सोचा कि हम जिंदगी भर ऐसे रहना चाहिए, के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम कैसे रहेंगे। तो हम जितना भी जो प्यार रिलेशन रखा था हमारे बीच में ही रखा था, किसी को पब्लिश नहीं किया था हमने, किसी को नहीं बताया था, लेकिन मजबूरी से आके मुझे बताना पड़ा दुनिया को, क्योंकि हम दोनों को चाहते हैं। इसलिए बोलना पड़ा कि मेरे जो दीदी है फैमिली का, बड़ी दीदी सरस्वती चंद, उन्होंने मुझे हमेशा मेंटली हरासमेंट करने लगा, हमेशा टॉर्चर करने लगे। इसलिए बातों में हमेशा मुझे बोला कि तेरा ये रिलेशन मेरी दुनिया को बता दूंगी, मेरे मीडिया को बता दूंगी, तुझे बहुत ब्लेम करा दूंगी, तेरा स्पोर्ट्स लाइफ को बर्बाद कर दूंगी। तो हमें जब टचर किया, जब डरने लगा, धमक-चमक दिया मुझे, तभी मैंने सोचा कि ये रिलेशन मैं खुद बता देंगे तो दुनिया को अच्छा रहेगा।
जी, आपके घर में अभी हालात कैसे हैं, कौन आपको प्रोटेस्ट कर रहा है और कौन आपको सपोर्ट कर रहे हैं?
जब मैंने बता दिया पब्लिक में, तो हर जगह से हर लोग से तो मुझे सपोर्ट आने लगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स लोग को बहुत इरेट हो गया, बहुत नेगलेक्ट हो गया, उन्होंने मुझे गुस्से में बहुत बुरा बुरा स्टेटमेंट देने लगा मीडिया में, जिसको मुझे बहुत सहना पड़ा, बहुत कष्ट लगा, दुख लगा मुझे कि मेरा रिलेशन, मेरे पेरेंट्स लोग मुझे समझना चाहे था, मेरे को सपोर्ट करना चाहे था, लेकिन नहीं करके ऐसे ऐसे ब्लेम कर रहे मुझे, वही ज़्यादा दुख लग रहा है अभी।
जैसे कि आपने कहा कि वो आपके फ़ैन रह चुकी हैं और आपको काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, तो क्या मुश्किल हालातों में जो समय गुजरा उसमें भी वो आपके साथ थी, आपके आपको सपोर्ट कर रही थी, आपके साथ खड़ी थी?
हाँ वो तो मेरे साथ में बोली ना, अभी 3 साल से मेरा रिलेशन है, 3 साल देखेंगे तो 17 से हमारा रिलेशन शुरुआत हुआ। ऐसे भी तो गांव की लड़की है, जब जब जाते तो खेलने गांव को घूमने के लिए, तो आके मुझे हमेशा बातचीत होता था हमारे दोनों के बीच में।
आपको आपके घर वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप इसको, इस रिलेशनशिप को कैसे आगे ले पाएंगी, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगी?
पता नहीं रिलेशनशिप आगे में क्या रहेगा, लेकिन पेरेंट्स में तो मेरा सिस्टर लोग सब मुझे मदद कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, लेकिन मेरी बड़ी दीदी से मैं नाराज थी। पता नहीं मेरा दीदी का स्टेटमेंट क्या रहेगा फ्यूचर में, अभी जो सच्चाई था मैं तो दुनिया को बता दिया, इसके बाद इसका माइंड कैसा रहेगा मेरे ऊपर, फीलिंग मुझे पता नहीं, जब टाइम आएगा तो पता चलेगा।
देखिए भारत में इस तरह के रिलेशनशिप को लेकर सवाल उठते हैं और समाज में इसका जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो उतना नहीं है ये माना जाता है, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि सोसाइटी में जैसा आपका रिकॉग्निशन है, जैसा आपका स्टेटस है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं?
पहले तो कहूँगी इंडिया बाहर में बहुत सारा स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेशनशिप कर चुके हैं ऑलरेडी, जैसे कैस्टर्स वोमेन हो या क्रिकेट दो लड़की भी अभी रिसेंटली शादी किया है ऑस्ट्रेलिया में, तो भारतीय संस्कृति परंपरा में तो ऐसा हुआ है नहीं, लेकिन पहली बार मैंने मीडिया को पब्लिश किया है मैं ऐसे करने वाली हूँ संविधान के हिसाब से, रूल के हिसाब से, तो ये लीगल नहीं है, कोई अपराध नहीं है। देखते भगवान की दुआ के हिसाब से फिर से फिर सुप्रीम कोर्ट इसको निकालेगा कि आप दोनों शादी करके रह सकते हो, तो फिर हम दोनों शादी करके घर बसाएंगे।
आपने तो अपने रिलेशनशिप के बारे में अनाउंस कर दी है, तो आगे का प्लान जो है आपका वो क्या है, कैसा आप सोच रहे हैं और क्या करेंगे आगे?
बेसिकली तो मैं ज़्यादा उम्र की नहीं हूँ, 23+ चल रही, अभी मेरा जो फोकस है स्पोर्ट्स के ऊपर, अभी मेगा कंपटीशन आने वाली है फ्यूचर में, ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसी दोनों को फोकस कर अभी ट्रेनिंग चल रहा है, अभी शादीशुदा करना, साथ में रहना पार्टनर के साथ, ये कभी सोचा नहीं, कभी ख्याल भी आया नहीं मेरे मन में। मेरा हमेशा ख्याल सपना है कि मुझे देश के लिए खेलना है, मेडल लेना है। स्पोर्ट्स करियर के बाद जब मुझे सब कुछ रिलीफ मिलेगा, मेरी नॉर्मल लाइफ में मुझे जीने के लिए हक मिलेगा, तब मैं मेरे पार्टनर के साथ रहने के लिए कोशिश करूँगी।
अभी आपके फैमिली से भी प्रोटेस्ट हो रहा है और सोशल मीडिया पर और तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं आपको इसके बारे में, ये आप बताइए कि आपका जो अल्टीमेट गोल है, आप ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं और ओलंपिक में मेडल जीतने की तैयारी में हैं, तो ये जो प्रेशर अभी बिल्डअप हो रहा है, इसका आपके खेल पर, आपके प्रैक्टिस पर कुछ असर पड़ेगा?
प्रभाव तो डाल सकता है जब माइंड डिस्टर्बेंस रहेगा हमेशा, क्योंकि जो ट्रेनिंग है वो फिजिकल ट्रेनिंग है, जब माइंड स्ट्रेट नहीं रहेगा तो फिजिकल ट्रेनिंग कैसे अच्छा रहेगा, तो माइंड जब ठीक रहेगा तो तभी ट्रेनिंग अच्छा रहेगा। तो हो सके अभी तक कंट्रोवर्सी शुरू हो चुका है ऑलरेडी, शायद मेरे हिसाब से 1 महीना तक ऐसे चलेगा, फिर बाद में देखेंगे जब मेरा सपोर्ट आएगा, फिर मेरा ट्रेनिंग अच्छा थोड़ा तो इधर उधर होगा, लेकिन मेरा कॉन्स्टेबल कोर्स के ऊपर रहेगा।
ये थी भारतीय महिला धावक दुति चंद, जिनसे बात कर रहे थे सुब्रत कुमार पति।
दिन भर शॉर्टवेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
अब रुख करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर का। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति जोको विडोडो को फिर से चुने जाने के विरोध में हो रही रैलियों के दौरान हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई है और 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। इन रैलियों में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है ताकि अफवाहों को रोका जा सके। कैसे हैं हालात जानने के लिए बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए हमारे सहयोगी आदर्श राठौर से।
इंडोनेशिया में राष्ट्रपति जोको विडोडो को फिर से चुने जाने का विरोध हो रहा है। राजधानी जकार्ता में हो रही विरोध रैली के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई। शहर के गवर्नर का कहना है कि अब तक 200 लोगों के घायल होने की खबर है। इंडोनेशिया के चुनाव आयोग के मुख्यालय के सामने हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे थे। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पटाखे और अन्य चीजें फेंकना शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। पुलिस का कहना है कि इन दंगों की पहले से ही योजना बनाई गई थी। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय पुलिस के प्रवक्ता मोहम्मद इकबाल ने कहा, आज जो घटनाक्रम हमें देखने को मिला इसके कारण अचानक नहीं उपजे थे, बल्कि ये सब कुछ पहले से बनाई गई योजना के तहत हुआ है। ये थे इंडोनेशिया की राष्ट्रीय पुलिस के प्रवक्ता के शब्द। प्रदर्शनकारियों की मौत कैसी हुई इसकी जांच की जा रही है। पुलिस प्रमुख का कहना है कि जनता ये न सोचे कि इन मौतों के लिए पुलिस जिम्मेदार है। उन्होंने पुलिस की ओर से फायरिंग किए जाने के आरोपों को भी गलत बताया। इंडोनेशिया के मुख्य सुरक्षा मंत्री विरंटो ने कहा कि सरकार को अफवाहों को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर आंशिक पाबंदी लगानी पड़ रही है। उन्होंने कहा, हम झूठी और भड़काऊ खबरें रोकने के लिए सोशल मीडिया के कुछ फीचर्स पर अस्थायी रोक लगा रहे हैं। ये थे इंडोनेशिया के मुख्य सुरक्षा मंत्री के शब्द। बीते मंगलवार को चुनाव आयोग ने जानकारी दी थी कि विडोडो ने 55.5% वोट हासिल करके फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। विडोडो ने लंबे समय से अपने प्रतिद्वंदी रहे प्रबोवो सुबियांतो को हराया था, मगर प्रबोवो ने धोखाधड़ी के आरोप लगाकर चुनाव के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पिछले बुधवार से ही देश के अन्य हिस्सों से राजधानी जकार्ता में लोग जुटने लगे थे। शुरुआती प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, मगर इस मंगलवार को हिंसक हो गए। पुलिस ने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है।
इंडोनेशिया में राष्ट्रपति जोको विडोडो के फिर से चुने जाने पर विरोध। ब्यौरा सुना रहे थे आदर्श राठौर। और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं एथलेटिक्स की दुनिया में, जहां पर स्प्रिंटर दुति चंद के समलैंगिक रिश्ते में होने की बात सार्वजनिक होने के बाद से उनसे और उनके परिवार के बीच रिश्ते बिगड़ गए हैं। सोमवार को उनकी बड़ी बहन सरस्वती ने दावा किया था कि स्प्रिंटर की पार्टनर ने संपत्ति और धन हड़पने के लिए दुति पर दबाव डाला और ब्लैकमेल किया। हालांकि दुति ने अपनी बहन पर ही ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी खुद की बहन उन्हें ब्लैकमेल कर रही है, उनसे 25 लाख रुपए भी मांगे थे, जिसके बाद ही उन्होंने दबाव में आकर दुनिया को अपने बारे में बताने का फैसला किया। और एथलेटिक्स की दुनिया से एक और खबर है कि एशियन चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट भारत की गोमती मारुमुथु डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। 30 साल की गोमती ने अप्रैल में दोहा में हुई एशियन चैंपियनशिप में 800 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता था। इसी चैंपियनशिप के दौरान उनका डोप टेस्ट हुआ था। उनके ए सैंपल में स्टेरॉइड पाया गया है। अगर उनका बी सैंपल भी पॉजिटिव आया तो उन पर 4 साल का प्रतिबंध लग सकता है, उनका पदक भी छिन सकता है। पटियाला में 13 से 15 मार्च चले फेडरेशन कप के दौरान भी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा ने उनका सैंपल लिया था। उस समय भी उनके सैंपल में प्रतिबंधित दवा के अंश पाए गए थे। तमिलनाडु की इस खिलाड़ी को पोलैंड के स्पाला में जारी रिले कैंप में हिस्सा लेने के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन उनकी फ्लाइट रद्द कर दी गई है। और क्रिकेट की दुनिया में महासंग्राम की तैयारी जोरों पर है, यानी कि वर्ल्ड कप की तैयारी। और वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम आज इंग्लैंड के लिए रवाना हो गई है। इससे पहले मंगलवार को कप्तान विराट कोहली और मुख्य कोच रवि शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोहली ने कहा कि इंग्लैंड की परिस्थितियों को झेलने से ज्यादा जरूरी है वहां पर वर्ल्ड कप के दबाव को झेलना। तो वहीं कोच ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी का टूर्नामेंट में बड़ा रोल होगा, खासकर उन छोटे छोटे मौकों पर जहां से मैच बदल सकता है। वर्ल्ड कप के मुकाबले औपचारिक तौर पर 30 मई से शुरू होंगे, लेकिन वार्म अप मुकाबला 24 मई से शुरू होगा, जिसमें पहला वार्म अप मुकाबला होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच।
वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का। अब से थोड़ी ही देर में बजेंगे रात के 8, लेकिन उससे पहले चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। चुनाव आयोग ने वीवीपीएटी पर 22 विपक्षी दलों के नेताओं की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से मतों की गिनती से पहले वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान करने की मांग की थी। इंडोनेशिया में हुए चुनावों के बाद दंगे भड़क गए हैं, जिसमें कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। इन चुनावों में जोको विडोडो राष्ट्रपति पद पर विजयी हुए हैं। ब्रिटेन की बहुत पुरानी और जानी मानी कंपनी ब्रिटिश स्टील ने काम करना लगभग बंद कर दिया है, जिसकी वजह से हजारों लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है। स्कनथ्रोप में स्थित इस कंपनी के मुख्य प्लांट सहित लगभग 25,000 सप्लाई चेन है। ईरान में एक गायिका को अदालत के सामने पेश होने का समन जारी किया गया है। दरअसल नेगर मुआज़म नामक इस गायिका ने पर्यटकों के एक समूह के सामने पारंपरिक पोशाक पहनकर गाना गाया था और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया था। कोरियाई प्रायद्वीप में विलुप्त हो चुकी चिड़िया की एक प्रजाति दोबारा पाई गई है। क्रेस्टेड इबिस नामक चिड़िया की ये प्रजाति कोरियाई प्रायद्वीप से 40 साल पहले विलुप्त हो चुकी थी। इस चिड़िया को आखिरी बार उत्तर और दक्षिण कोरिया के असैन्य प्रांत के जंगलों में देखा गया था। बाद में दक्षिण कोरियाई प्रशासन ने चीन से इस प्रजाति की 2 चिड़िया प्राप्त की थी और इन्हें संरक्षित करने का प्रयास किया था। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला रविशंकर कुमार ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आए हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें इजाज़त। नमस्कार।